So we can have a small exercise here. So इस अंत के छह अध्याय में भक्तियों का डिस्क्रिप्शन आया और अभी अंत पीछे गए जो उसमें अभी अंत में जो छह अध्याय आएंगे 13 से 18 तक वो एक रूप से देखा जाए तो अधिकतर बात बताई गई है ज्ञान योग के आधार से। अधिकतर बात पहले जो छह अध्याय थे उसमें भगवान ने कर्म योग को अधिक बल दिया था, विशेष करके कर्म योग है या निष्काम कर्म योग है उसको अधिक बल दिया था, अर्थात किस तरह से कर्म के माध्यम से, कर्म करते रहने के माध्यम से व्यक्ति भक्ति की अवस्था तक या फिर सफलता प्राप्त कर सकता, सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अभी इस अध्याय के सेक्शन में ज्ञान मार्ग का उपाय करके किस तरह से व्यक्ति ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अभी कोई ये प्रश्न कर सकता है कि अगर भक्ति जो है योगा लैडर में सबसे ऊपर है, योगा लैडर तो याद है ना सबको, उसमें स्टेप 1 2 3 4 तो सबसे ऊपर है भक्ति। भक्ति अगर सबसे ऊपर है तो भक्ति के डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन खत्म होने के पश्चात फिर से ज्ञान योग का चर्चा क्यों किया जा रहा है? जब भक्ति योग की बात तो हो गई ऑलरेडी 12 चैप्टर में, तो अब ज्ञान योग की चर्चा करने से भला क्या लाभ? सो सातवें श्लोक में 12वें अध्याय के भगवान ने ये कहा है कि तेसाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया विशत चेतसाम। भगवान कहते हैं कि उसको जन्म मृत्यु चक्र से मैं पूर्ण रूप से बाहर निकालता हूँ। तो भगवान बाकी के जो छह अध्याय है वो एक प्रकार से अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का प्रयास कर रहा है। अन्य जो छह अध्याय है उसमें भगवान फिलोसॉफिकल डिस्कशन बता रहे, जैसे अभी 13वां चैप्टर है बड़ा टेक्निकल है ये चैप्टर, कई बार एग्जांपल दे दे करके समझाना पड़ता है, बिना एग्जांपल के समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे है, सबने प्रॉपर एग्जाम्पल यूज किए, कोई मुश्किल चीज होती है उसको समझाने के लिए फिर एग्जाम्पल का उपयोग करना पड़ता है। सो इस सेक्शन को ज्ञान सेक्शन कहा जाता है, यद्यपि भगवद गीता वास्तव में तो पूर्ण रूप से भक्ति योग पर आधारित है। तो यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान के द्वारा भक्ति योग के करीब कैसे पहुंच सकते हैं? अध्यात्म वो कर्म के माध्यम से था, अब ये इसने ज्ञान के माध्यम से भक्तियों के करीब कैसे पहुंच सकते हैं? अर्थात मध्य के जो 12 अध्याय है उसी का महिमा ये गाएंगे, अन्य 6 अध्याय जो है ये वही बीच के जो 12 अध्याय उसका महिमा गाएंगे। भक्ति योग अंतिम लक्ष्य है, ये प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किस तरह से अपने ज्ञान का अनुशीलन करके भक्ति योग तक पहुंच सकता है। अर्थात ज्ञान जो है ये माया से हमारी अनासक्ति में सहायता करता है। जैसे समझ लो कि मैं फंसा हूं देहात्म बुद्धि में कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर से जुड़ी सारी चीज मेरी है, तो फिर भगवान उसको ज्ञान के माध्यम से, अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बताना चाहते हैं कि टेक्निकली समझने का प्रयास करो कि आप शरीर नहीं हो। वो भगवान ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान के अनुशीलन से अनासक्ति जो है वो स्वाभाविक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मर जाता है तो दुखी होता है तो उसके पास जाकर के लोग भगवद गीता का संदेश बताते हैं ना कि सु जैसे क्या क्या बोलते हैं, क्या साथ में लेके आए थे, क्या साथ में लेके जाएंगे, और भगवद गीता का वो जो सार पहले होता था, तो ऐसे कुछ श्लोक बता देते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, या फिर देही नौस्मेन यथा देहे कौमारम, तो हालांकि बोलने वाला व्यक्ति वो बता रहा है कि शरीर आत्मा का अंतर क्या है, राइट। यदि भी वो खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन उसका इच्छा है कि वो सामने वाला दुखी है उसको थोड़ा हेल्प किया जाए। अब जो दुखी व्यक्ति है अगर वो शास्त्र चक्षु से देखेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो संभल लेगा। लेकिन वो बोलेगा बोलना आसान है, देही नौस्मेन यथा देहे, अगर वो ग्रस्त है अज्ञानता में तो उसको कितना भी श्लोक आप समझाओगे वो आत्मा शरीर के अंतर को समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने भगवत गीता पढ़ा है और आपने इस प्रकार के 13 चैप्टर वगैरह सब पढ़ा है तो आप किसी भी अवस्था में अपने आप को संभाल सकते हो, किसी भी अवस्था में, क्योंकि आप हरेक चीज को, हरेक परिस्थिति को, हरेक वस्तु को, हरेक व्यक्ति को ज्ञान के चक्षु से देखते हो, ज्ञान के आधार से देखते हो, शास्त्र के आधार से देखते हो, इसलिए आप विचलित नहीं होते। सो इस तरह से कर्म हो या ज्ञान हो, भक्ति अगर उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है तो वो यूजलेस है। कोई व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे से करता है, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति नहीं है तो वो व्यर्थ है। इस तरह से ज्ञान भी कोई प्राप्त करता है लेकिन वो उसका अंतिम उद्देश्य भक्ति नहीं है तो वो व्यर्थ है। तो कर्म और ज्ञान, उन दोनों के बीच में भक्ति योग को यहाँ पर स्थापित किया है। नाउ वी कैन डिवाइड द चैप्टर इन 5 डिफरेंट सेक्शंस, 13 चैप्टर। प्रभुपाद कहते हैं इस अध्याय के अंत में कि ये जो अध्याय है थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए भक्तों की सहायता से इसको समझा जाना चाहिए, अध्यात्मिक गुरु की सहायता से समझना चाहिए। अगर आप अध्यात्मिक गुरु की सहायता से नहीं समझोगे तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, अर्थात प्रभुपाद के तात्पर्य के बिना ये अध्याय को समझना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद के तात्पर्य है इसलिए ये आसान है समझना, लेकिन आप लोग के लिए बड़ा आसान है, नो नीड टू वरी। ये नहीं सोचना कि ये 13 चैप्टर इज वन ऑफ द हैवीएस्ट, नो, बड़ा आसान है। नाउ 1-7 जो श्लोक है उसमें अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं, उसका चर्चा हम करेंगे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर सेकंड जो सेक्शन है 8-12 भगवान ज्ञान और मुक्ति की विधि बताते हैं, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड लिबरेशन। मुक्ति तेरह से 19 भगवान बताते हैं ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसको जानना चाहिए, ज्ञेय नॉलेज, आई मीन नॉलेज मीन्स टू हैव सम, लाइक आई नो ये लैपटॉप है फॉर एग्जाम्पल, सो अगर उसके विषय में जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है तो ज्ञेय ये बन जाता है लैपटॉप, उसके विषय में किसको जानना है, लैपटॉप को जानना है। विधि क्या है, टेक्निकली उसको पढ़ा जाए, वो विधि है, वो प्रोसेस है, ज्ञान है। तो इस तरह से अलग अलग चीज, ज्ञाता, ज्ञेय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भगवान और प्रकृति, ये सब इसके विषय में भगवान बताते हैं। फिर 20-26 कृष्ण एक्सप्लेन्स प्रकृति पुरुष और उनका संयोग, यूनियन।
प्रकृति पुरुष
और उन दोनों का संयोग,
प्रकृति
प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति जो आप देखते हो, कुदरत, नेचर जो आप बोलते हो, प्रकृति। और पुरुष का अर्थ होता है भोग करने वाला, एंजॉयर। और अंत में 27 से 35 तक ज्ञान चक्षु, विजन ऑफ नॉलेज। कई बार भक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये सारे क्वालिटीज हमें क्या लेना देना, हम तो है वृंदावन वाले कृष्ण के भक्त, हम तो गोवर्धन की उपासना करने वाले हैं, हम तो श्रीमती राधारानी के अनुयायी में से है, और हम तो वृंदावन वाली भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। कई भक्त लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि रसिक प्रकार का विचारधारा रखते हैं कि हम वृंदावन से जुड़े हुए हैं, हमारे तो यू नो क्या बोलते हैं वो, मेरे तो गिरधर गोपाल जूझो ना कोई, और वही सोचते रहते हैं। That's very good thing, लेकिन उस अवस्था पर आज हम नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने आप को वृंदावन के साथ कनेक्ट करें। अर्थात इस अध्याय में जो ज्ञान का वर्णन आता है, उस ज्ञान के लक्षणों को भी हमने अभी तक आत्मसात नहीं कर पाए। हो सकता है कुछ मात्रा में किए हैं, पूर्ण मात्रा में नहीं। तो ये जो लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में इस अध्याय में, वो सारे लक्षण कृष्ण भक्ति को सहायक के रूप में होते हैं। अगर वो लक्षण प्राप्त होते तो आपकी कृष्ण भक्ति अधिक स्थिर हो पाती है। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस नॉलेज। सो वी कैन स्टार्ट विथ सिक्स। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। चेतना का अर्थ अगर आप पता है, ऐसे तो कई अर्थ है चेतना के, लेकिन चेतना को जैसे हम कृष्ण चेतना बोलते हैं, कृष्ण भावना बोलते, तो कृष्ण चेतना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जैसे अभी क्रिकेट का फीवर चल रहा था, है ना, तो सब जगह क्रिकेट का, सब कहीं पर भी बात करो तो ये चेतना में घुस जाता है वो क्रिकेट। माइंड, माइंड जो है वो चेतना से बना हुआ है। तो चेतना जिस मंच पर आप कार्य करते हो उसको चेतना बोलते हैं।
जिस भाव में,
हाँ, या किस भाव से कार्य, जैसे आप आजकल उसकी हवा चल रही, तो उसके विषय में अधिकतर सोचते रहते हो। अभी जब वो एक महीने पहले चुनाव चल रहे थे, तो आपके चेतना पर चुनाव हावी हो गए थे। तो चेतना में रहने का अर्थ क्या होता है कि एक आपके माइंड में रहता है वो, आप इंस्टेंट आप उसके ऊपर बोल सकते हो, उस चेतना पर आप काम करो। या कई बार उसको कुछ लोग बोलते हैं कि सेकंड माइंड या सेकंड ब्रेन या सटल ब्रेन, या सम टाइम पीपल यूज सच वर्ड्स। लेकिन वो इस भाव से चेतना, भगवान ऐसा चाहते हैं कि जैसे आप कुछ कुछ चीज हावी हो जाती है ना मन के ऊपर, वैसे कृष्ण भक्ति आपके मन में निरंतर रहनी चाहिए। कृष्ण निरंतर आपकी चेतना में रहना चाहिए। दैट्स द आइडिया। यस, हो
अचानक ये कैसा होती है,
बोलिए।
मैं भी अभी सोचा, अभी बातचीत करता रहा, सोचा कि प्रचार के लिए ज्ञान होना परम आवश्यक है। अगर प्रचार, भगवान जी का प्रचार कई जगह वर्णन आता है कि जो प्रचार करता है मेरे भक्तों में, बड़ा भगवान जी बहुत कृपा करते हैं, तो जब ये सारा ज्ञान नहीं होगा तो मायावादियों के सामने आप पॉइंट टू पॉइंट उसका रिपोर्ट कैसे करें। और इसका सबसे बढ़िया उत्तम उदाहरण गोपियों का है। उद्धव जी जो थे बृहस्पति जी के शिष्य थे, और गुरुओं में बृहस्पति सबसे बड़े गुरु और पुरोहित माने जाते हैं, उनके शिष्य थे। और उस समय निराकार ब्रह्म के बारे में उनसे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। और अगर गोपियां केवल इतना ही कह देती कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो फिर बात नहीं बनती। उन्होंने उद्धव जी के एक एक पॉइंट को विद प्रमाण के साथ वहीं पे फिनिश किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि उद्धव जी जो है प्रचार में उद्धव जी को भक्त बना दिया। और उद्धव जी भक्ति के उन्माद में ढूंढते हुए पथरा पहुंच गए। तो ज्ञान, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है भक्तों को।
Yes.
और ज्ञान के कंधे और कर्म के कंधे पे जो भक्ति खड़ी होगी तो वो कभी गिरेगी नहीं। मैंने छोटा सा चीज बनाया
नहीं, नहीं।
भक्ति और ज्ञान दोनों के ऊपर, ज्ञान और कर्म के दोनों के ऊपर भक्ति बैठी है तो इस तरह है बिल्कुल, हिलने का डर नहीं है कोई भी।
श्रीमद् भागवत में कहा है कि भक्ति के दो पुत्र हैं कर्म और ज्ञान। भक्ति के यद्यपि भक्ति तो माता है, भक्ति स्वयं माता है, तो कई बार केवल हमें यहाँ पर एक ही चीज को ध्यान रखना है, ज्ञान और कर्म से भक्ति में सहायता होती है, लेकिन भक्ति ज्ञान और कर्म के अधीन नहीं है। बस ये बात को हमें भूलना नहीं है, समझे कि ज्ञान और कर्म आपको भक्ति में सहायता कर देते हैं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और कर्म के अधीन नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति में ज्ञान और कर्म नहीं पाए जाते तो वो व्यक्ति फिर भी शुद्ध भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर आप सोचो तो भी उत्तम भक्ति उसी कहते हैं कि जो सब प्रकार की भौतिक कर्म और भौतिक ज्ञान की इच्छाओं से मुक्त हो, अर्थात मुक्ति की अभिलाषा और भोग वांछा से मुक्त हो, उसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। भगवद गीता का जो ज्ञान है वो शुष्क ज्ञान नहीं है, जैसे अभी 13वें अध्याय में जो ज्ञान बताया है भगवान ने वो भगवान के विषय में ज्ञान है, शुष्क ज्ञान नहीं है। अर्थात कृष्ण किस तरह से इस सृष्टि का संचालन करते हैं ये ज्ञान है, इसलिए भगवान के विषय में ज्ञान को अनुकूल करने से हमारी भक्ति जो है वो स्थिर बनती है। जैसे प्रभु बता रहे थे इस पॉइंट में कि अगर आप किसी लॉजिक या रीजन के बिना केवल ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो कृष्ण भक्ति को तो संभावना है कि आप उससे चलित हो जाओ, संभावना है। लेकिन अगर आप पूरा तत्वज्ञान का आधार लेकर के पूरे लॉजिक और आर्गुमेंट्स रीजन के साथ आप उसको समझने का प्रयास करते हो तो आपकी कृष्ण भक्ति गिरेगी नहीं। जैसे समझ लो कि आप क्यों कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी कार्य कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है क्यों कर रहे हो तो आपको पूछना चाहिए कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। कुछ भी हो, एनीथिंग, प्रभु हमेशा चाहते थे दैट अंडरस्टैंड इट देन डू इट, पहले समझो फिर करो। सो अर्जुन पहले श्लोक में 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, सो उसको आप स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टेक्स्ट 1 पढ़िए।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं देह के विषय में जानने का इच्छुक हूँ।
यस, सो एक तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखे हैं इसी अध्याय के साथ, नाउ स्टार्टिंग विद 13 चैप्टर, हाउ द लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल नेचर, जीव किस तरह से प्रकृति के संसर्ग में आता है और भगवान उनको कर्म, ज्ञान और भक्ति ऐसे अलग अलग प्रकार से किस तरह से उसका उद्धार करते हैं। भगवान किसका उद्धार करते हैं? जीव का उद्धार करते हैं। क्यों उद्धार करते हैं? प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण वो पतन प्राप्त किए हैं, इसलिए उनका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा जो है भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, जो हमने दूसरे अध्याय में चर्चा की थी कि जैसे आप आज मेरा जो शरीर देख रहे हो ये अभी टेम्पररी आज के समय का है, लेकिन पहले का शरीर मेरा कुछ और था और आगे आके मुझे कोई और चेहरा ही कुछ अलग आएगा, नया ही आएगा। जैसे आज आपने सफेद कलर के वस्त्र पहने, कल हो सकता है आप हरे रंग के कपड़े पहनोगे, लाइक दैट, यू नो। तो ये जो शरीर है उससे संपूर्ण रूप से आत्मा तो अलग ही है, फिर भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम शरीर धारी है शरीर में। तो इसको इस अध्याय में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस तरह से आत्मा जो है वो शरीर के भीतर है और किस तरह से वो प्रकृति के संसर्ग से मुक्त होकर के भगवान के पास पहुंच सकता है, ये चीज को इस अध्याय में विस्तार से बताया जा रहा है आपसे। इज दैट क्लियर सब्जेक्ट मैटर? आई एम बिकॉज ऑफ प्रकृति, मैं प्रकृति में फंसा हूं और इस प्रकृति से किस तरह से मैं अपने आप को मुक्त करके भगवान के शरणागत होकर के अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकता हूँ। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। तो अर्जुन ने यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे हैं, अर्थात 6 चीज के विषय में जिज्ञासा की है। एक है प्रकृति क्या है, तो अगर संक्षिप्त में आपको बताया प्रकृति अर्थात प्रकृति नेचर। फिर पुरुष क्या है, पुरुष का अर्थ होता है एंजॉयर, भोग करने वाला। जैसे समझ लो कि प्रकृति है वो भोग्या है, प्रकृति को भोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने एक एप्पल पड़ा है, अगर मैं उसको खाने वाला हूं तो ये एप्पल जो है वो प्रकृति है मेरे लिए, वो भोग का साधन है या भोग का ऑब्जेक्ट है और मैं उसका भोगता हूं, मैं उसको खाने वाला हूं अर्थात मैं उसका आनंद उठाने वाला हूं, तो वह है पुरुष। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे आप नहीं समझ पा रहे तो आप पूछ लेना बीच में। फिर क्षेत्र, क्षेत्र का प्रॉपर तात्पर्य में अर्थ करते हैं फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। फील्ड ऑफ एक्टिविटीज का अर्थ होता है कर्म क्षेत्र। क्षेत्र जैसे कोई भूमि होती है ना, जैसे मेरा 2 बीघा जमीन है, इनका 4 एकड़ जमीन है, तो उसको क्षेत्र हुआ। तो इस प्रकार से हमारे कर्म का क्षेत्र अधिकतर समय, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम क्षेत्र का उपयोग होता है शरीर के लिए। शरीर, हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्षेत्र ज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, ज्ञान चक्षु से ज्ञ आता है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बोलते हैं सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में सर्व कुछ जानने वाला, तो क्षेत्रज्ञ मीन्स उस क्षेत्र को जानने वाला। तो क्षेत्र को जानने वाले 2 लोग हो सकते हैं, एक तो आत्मा भी हो सकता है और एक परमात्मा भी हो सकता है। ये शरीर के 2 क्षेत्रज्ञ हैं, जैसे मैं इस शरीर का क्षेत्रज्ञ हूं, मेरे शरीर में कुछ भी हो रहा है तो मुझे पता है, राइट। अगर एक मच्छर भी काटेगा कहीं पर भी तो मैं उसको पूरी तरह से जानता हूं, लेकिन आपके शरीर में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। आपके शरीर का पूरा हिसाब किताब आपके पास है, राइट। लेकिन एक व्यक्ति को सभी शरीर का सब पता है, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो वो 2 क्षेत्रज्ञ हुए। फिर ज्ञान, अर्जुन ने पूछा ज्ञान क्या है, तो भगवान सबका उत्तर देंगे। ज्ञान 8 से 12 श्लोक में ज्ञान का विषय आएगा, तो ज्ञान क्या है वो भगवान बताओ। ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ होता है किसको जानना है, ज्ञान के माध्यम से किसको जानना है। ये 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट, समवॉट टेक्निकल बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स नाइस थिंग, राइट। सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ओह, सो भगवान अभी उत्तर देंगे, कृष्ण उत्तर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं उस क्रम में भगवान उत्तर देंगे। जनरली गुरु ऐसा ही होते हैं, शिष्य कुछ भी पूछे, शिष्य को थोड़ी पता है कि पहले क्या पूछा जाता है बाद में क्या पूछा जाता है। भगवान को, वो गुरु है, उनको तो पता है कि पहले किस चीज का वर्णन करूंगा। तो भगवान तुरंत ही शरीर को क्षेत्र बता करके और उसका जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा, ये दोनों का विषय में भगवान फिर बात करना शुरू करते हैं। तो हाउ मेनी, ये श्लोक कौन सा था, एक वन, ओनली वन, वन एंड टू साथ में। सो क्षेत्र में कैसा होता है, जैसे अगर समझ लो आपने प्रभापाद एक लेक्चर में बताते हैं फार्मर क्षेत्रज्ञ इस प्लॉविंग द लैंड क्षेत्र जो है उसको क्या बोलते हैं खेत किसान क्या करता है जोतता है खेत जोतता है तो वो उसको पता है कि मैं इस खेत को जोत रहा हूँ वो उसको पता है और उसने जो बीज डाले हैं उसका परिणाम मिलता है। अब फ्रूट जो उसको प्राप्त होता है या जो उगता है जो उपज होती है क्या बोलते हैं आप उसको फसल होती है जो फसल होती है या उपज होती है वो कौन सी होगी
आम का बीज है तो आम
है ना
जैसा बीज बोएगा जैसी मेहनत करेगा
वैसी फसल होगी
मात्रा और क्वालिटी
उसके ऊपर आधारित है राइट। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई फसल आती है तो उससे क्या समझ सकता है कि जो बीज आपने बोए थे वो होगा। अगर आपने आपका इच्छा था कि आप सब्जी का खेत बनाना चाहते सब्जी उगाना चाहते लेकिन आपने गलती से गुलाब के फूल के बीज डाल दिए तो क्या उगेगा गुलाब के फूल गुलाब के पौधे होंगे। तो इसको बोलते हैं क्षेत्र ने प्रॉपर एग्जांपल दिए थे ये इट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू प्लांट। सिमिलरली इसी तरह से आत्मा जो है वो ये शरीर रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज डालता है और फिर उस कर्म रूपी बीज के माध्यम से वो शरीर के अलग अलग परिणामों को प्राप्त करता है। Happiness and distress that he will reap from this field depend on the activities that he performs with the body. The body is called the field of activity and the doer, the soul, is called the knower of the field. अर्थात क्षेत्रज्ञ जो है वो है शरीर और क्षेत्रज्ञ जो है वो है आत्मा और क्षेत्र जो है वो है शरीर। Is that difficult to understand? एक किसान और उसका खेत किसान जो है वो क्षेत्रज्ञ है और खेत जो है वो उसका शरीर है क्षेत्र है
फार्म हाउस है
ऐसा फार्म हाउस
उसी के अंदर रहता है वही काम करता है
yes, उसी के अंदर रहता है उसमें काम करता है लेकिन वो केवल अपने फार्म को जानता है बस। सो नाउ टेक्स्ट 3 Go ahead with that. ज्ञेय जानने वाला जो जानने वाला किसान जो है वो ज्ञान अच्छा ज्ञेय का अर्थ होता है किसको जानना हरे कृष्ण ज्ञेय का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञान का विषय किसको जानना जैसे ज्ञान आपके पास है लेकिन उस ज्ञान से आप क्या प्राप्त करोगे किसको जानेंगे आप वो है ज्ञेय है ना। भगवान एक रूप से देखा जाए तो भगवान अंतिम ज्ञेय है कि ज्ञान का किसी भी साधन का उपयोग करो लेकिन जो जानने योग्य सबसे उत्तम है वो है कृष्ण उनको जानना है दैट्स द आइडिया। सो 3 नंबर का श्लोक
हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेने लेना ज्ञान कहलाता है ऐसा मेरा मतलब
फिर से पढ़िए मैं समझ लेता।
हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है ऐसा मेरा मतलब।
अब समझ यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुझे भी क्षेत्र में तुम मानो एक ही क्षेत्र नहीं है मैं भी क्षेत्र हूं भगवान यहाँ पर कह रहे वेरी क्लियरली जैसे कि खेत की बात हम कर रहे थे तो इस खेत के कौन से कोने में क्या फसल है और इस जगह का एरिया जो है उसमें अधिक गोबर की आवश्यकता है, उस स्थान में चींटियों का प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो है पर्टिकुलर फेंसिंग के साइड का जो एरिया है वहां पर बाहर से पशु आते हैं और फसल में से कुछ खा के चले जाते हैं, तो ये सब चीज किसको पता है? किसान को पता है, किसान इसको विषय में जानता है। लेकिन वो किसान बाजू वाले खेत में क्या हो रहा है उसका उसको नहीं पता, या तीन खेत छोड़ के आगे का खेत जो है उसके में उसमें क्या हो रहा है उसको नहीं पता। लेकिन जो राजा होता है वो सभी खेत को जानता है। ये समझ लो कि ये हमारा पूरा बिल्डिंग है, ये किसी एक व्यक्ति का है, एक मालिक है उसका, और यहाँ पर हर एक घर जो है वो किराए पे दिया हुआ है किसी को, तो इस संपत्ति का जो मालिक है उसको तो सब पता है कि मेरे थर्ड फ्लोर वाले घर में जो किचन है उसमें पानी लीकेज है, उसको पता है कि उसको टॉप फ्लोर वाला जो है बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ग्राउंड फ्लोर वाला जो घर है उसमें भेज का प्रॉब्लम है, दीवार में प्रॉब्लम, ये सब चीज को पता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मकान जब वो किराए पे देता है तो उस मकान में रहने वाला व्यक्ति जो है केवल उसको तो उतना ही पता है कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, दूसरे के घर में क्या प्रॉब्लम वो चेक करने भी नहीं गया, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन भगवान को सबका पता है। तो इस तरह से भगवान जो है वो पूर्ण क्षेत्रज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कृष्णा, इसलिए उनको परमात्मा के रूप में भी आप उनको कह सकते हो। परमात्मा मेरे हृदय में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है, ये दोनों को एक व्यक्ति पूर्ण रूप से जानता है, परमात्मा इज अ नोवर, वो उनको भी क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और इस तरह से शरीर जो है उसको इस अध्याय में अधिकतर शरीर को क्षेत्र बोला गया है। सो और क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कुछ बोएगा वो कुछ पाएगा, ही विल गेट एवरीथिंग व्हाट इज। सो एक चीज यहां पर ये समझना अच्छा है फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, हम ये शरीर के क्षेत्रज्ञ है लेकिन हम इम्परफेक्ट क्षेत्रज्ञ है, अर्थात इस शरीर के बारे में भी हमें पूरा ज्ञान नहीं है, ये दिव्य क्षेत्रज्ञ है लेकिन इस शरीर के विषय में भी हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। जैसा वे समझ लो कि मेरे पेट में कहीं पर दर्द है तो मैं अपने आप से इसको नहीं समझ पाता हूं, तो मुझे डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है, क्यों पेट में दर्द है, और डॉक्टर भी क्या करते हैं, वो भी हालांकि वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो समझ नहीं पाते मेरे शरीर में क्या है, लेकिन उनके शास्त्र पढ़े हैं, उनके मेडिकल लाइन के, उस शास्त्र के आधार से वो आपको बताते हैं कि ये समस्या लग रही है और इसका ये उपाय है। तो आई एम ऑल्सो नॉट द रियल नोअर ऑफ द फील्ड, क्षेत्रज्ञ पूरा क्षेत्रज्ञ एक ही व्यक्ति पूरा क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा ही इज द रियल क्षेत्रज्ञ। और भगवान यहाँ पर ज्ञान को इस तरह से डिवाइड किया है, इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया है, ज्ञान किसे कहते हैं, शरीर आत्मा और परमात्मा इन तीनों के विषय में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज्ञान बताया गया है, इन तीनों के ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, परमात्मा आप समझ रहे हो, तीन चीज अलग है, समझ रहे हो ना, तीन अलग चीज है, शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ, ये शरीर आप देख रहे हो शरीर है, उसके अंदर आत्मा अर्थात मैं खुद आत्मा, और मेरे साथ परमात्मा विराजमान है, भगवान का अंश जो सब चीज को जानता है, मेरे सभी कर्मों को जानता है, ये तीन चीज के विषय में जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। नाउ इफ समबडी कैन रीड द परपर्ट लाइन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, The constitution of the individual soul and the constitution of the super soul is known in terms of Vedic literature as Jnana. Anyway, this is one more line. That is the opinion of Krishna. To understand both the soul and the super soul as one yet distinct is knowledge. आत्मा और परमात्मा को एक क्षेत्रज्ञ के रूप में मान करके फिर भी दोनों अलग अलग है, ये समझना इसको ज्ञान कहते हैं। वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी अर्थात शरीर एंड द नोअर ऑफ द एक्टिविटी अर्थात आत्मा या परमात्मा इज नॉट इन परफेक्ट नॉलेज, वो परफेक्ट नॉलेज में नहीं है। सो इस श्लोक के विषय में कई चीज है, जैसे कि कृष्ण ने पांचवें अध्याय में बताया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जो साक्षात्कार जब आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार से अगर कर्म किया जाने से उसको बंधन नहीं लगता है, ये पांचवें अध्याय में भगवान ने बताया था। राइट, यद्यपि ये ज्ञान आत्मा और शरीर का ज्ञान, सांख्य आत्मा और शरीर का जो ज्ञान है केवल इतना ही, वो मुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है केवल अपने आप में। सत्वगुणी ज्ञान है लेकिन वो आपको मुक्ति प्राप्त कराने में असमर्थ है या पूर्ण नहीं है। जब तक वो परमात्मा के विषय में नहीं जानता, जब तक वो परम भगवान के विषय में नहीं जानता, तब तक उसको मुक्ति लाभ नहीं होती, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्म भूत अवस्था तक पहुंचता है, ब्रह्म भूत अवस्था अर्थात मुक्त अवस्था, वो तभी प्राप्त होती है जब वो भगवान को जानता है, परमात्मा को जानता है। अर्थात आत्मा का ज्ञान भगवान से स्वतंत्र आपको कोई लाभ नहीं देगा। कई बड़े बड़े ऋषि त्यागी वैरागी है जो आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हैं और उन लोग का कार्य आचरण उनके सभी कर्म इस भाव पर कार्य करते, इस मंच पर कार्य करते हैं कि वो शरीर नहीं है वो आत्मा है, फिर भी उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक कोई व्यक्ति भगवान को समझेगा नहीं तब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात बॉडी एंड सोल इज नॉट इनफ, बॉडी सोल एंड सुपर सोल देन यू आर परफेक्ट। ऐसा है, शंकराचार्य और कई अन्य मायावादी लोग इस पर्टिकुलर श्लोक है 13वें अध्याय का 3रा श्लोक, उस पर बहुत बड़े बड़े टीकाएं लिखी है, बड़े बड़े तात्पर्य लिखे, और वो लोग कहते हैं यहाँ पर च शब्द का उपयोग है। च शब्द का उपयोग इस तरह से है, उन लोग के अनुसार क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, जो ज्ञाता है, वो भी मैं हूं। अच्छा, अर्थात तुम्हारा शरीर में अर्थात तुम जो हो आत्मा, वो भी मैं हूं, सेम ऐसा वो लोग कहते हैं। अब समझे क्या कह रहे हैं वो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो जीवात्मा है वो भी मैं ही हूं, अर्थात जीव और भगवान एक है, वो लोग ऐसा कहते हैं।
संस्कृत की ग्रामर के हिसाब से तो ये कंटिन्यूएशन है।
yes.
तो जैसे कहते हैं नहीं कोई बात कहीं और आगे है।
और yes.
तो क्या पीछे नहीं है, चाहे आगे होना चाहिए।
हाँ।
और चाहे चूंकि वार्तालाप में हमेशा पीछे बोला जाता है, संस्कृत में हिंदी
yes.
में तो और पहले कह देते हैं
yes.
और संस्कृत में चाहे थोड़ा बाद में बोला जाता है, इसीलिए चाहे यहाँ से प्रारंभ हो गया। गुरु जी एक बात कह दी, अच्छा और
एडिशन है,
उन्होंने इसको जोड़ दिया आपस में।
लेकिन शंकराचार्य के जो अनुयायी लोग हैं वो चका अर्थ ऑल्सो करते हैं, ऑल्सो चमिस ये भी, ऐसे वो भी मैं ही हूँ, ऐसे
वार्तालाप में ऐसी
वार्तालाप में। हाँ अगर, लेकिन ये लोग ग्रामर के एक्सपर्ट होते हैं, मायावादी लोग भी, शंकराचार्य काशी के जो विद्यार्थी होते हैं वाराणसी के, वो लोग भी एक्सपर्ट होते हैं ऑफकोर्स, आई डोंट नो वेदर यू आर आल्सो
स्पीकिंग फ्रॉम दैट. नहीं, मैं तो बस जो गुरु लोगों ने सिखाया है उसी की बात कर रहा
हूं. नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स गुड.
वार्तालाप में सामान्यतः
आप तो वैष्णव पद्धति के आधार से पढ़ रहे हो.
उसी के हिसाब
से आई अंडरस्टैंड, वैष्णव तरीके से आप पढ़ रहे हो, लेकिन मायावादी लोग इसका अर्थ का अनर्थ कर देते. उन्होंने तो आपने तो ग्रामर का सिंपल रूल बता करके बताया कि ग्रामर के रूल के अनुसार भी ये जो स्टेटमेंट है भगवान का वो वैष्णव जो ज्ञान है उसके अनुकूल है, लेकिन मायावादी लोग क्या करते हैं इसका दूसरा अर्थ निकाल देते हैं. अर्थात उनका कहना है आत्मा ही परमात्मा है. बड़े गर्व से बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा. क्या कभी देखा है, क्या कभी सुना है, पढ़ा है कि आत्मा किसे बोलते हैं, परमात्मा किसे बोलते हैं? 99% लोग जो ऐसा बोलते हैं ना आत्मा से परमात्मा, उनको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता है. लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो इस प्रकार की थियोरी शास्त्र को ग्रामर की दृष्टि से या उन्हें तत्वज्ञान की दृष्टि से शंकराचार्य के फॉलोअर्स, वो लोग इस तरह से आत्मा को परमात्मा के रूप में घोषित करते हैं. नाउ प्रभुपाद इसके विषय में आर्ग्यूमेंट भी रख रहे हैं. प्रभुपाद कहते हैं कि अगर उनके स्टेटमेंट को स्वीकार कर लिए जाए, यद्यपि भगवान ने तो बोल दिया 15वें अध्याय में आएगा कि आत्मा से एक बिल्कुल अन्य ही एक पुरुष है, दूसरा ही एक व्यक्ति परमात्मा है. भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया परमात्मा अलग व्यक्ति है, आत्मा अलग व्यक्ति है. लेकिन अगर दोनों अगर एक मान लिया जाए जिस तरह से मायावादी ये दावा करते हैं, तो जो एक ये दोनों एक है, तो ये एक जो है ऐक्य, दोनों का ऐक्य, तो ये ऐक्य जो है वो दूसरे एक को ज्ञान कैसे देगा?
समान स्तर
पे हो गए. एक एक दूसरे एक को कैसे ज्ञान देगा?
एक समान ज्ञानी, एक समान शक्ति, तो कैसे
दो अलग अलग हो गए? तो अगर समझ लो कि आप कुछ नहीं जानते और मैं कुछ जानता हूं तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन हम दोनों एक ही है, तो कौन किसको क्या बताएगा?
पूछेगा
भी नहीं कोई. तो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि कौन सा एक किसको क्या बताएगा. अगर एक 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 पूर्ण है तो दूसरा एक अपूर्ण कैसे हुआ, है ना? दूसरा एक अपूर्ण कैसे हुआ? सो इस तरह से ये दोनों ही अगर एक होता है तो फिर भगवद गीता की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, और फिर भेद जैसा कोई अंतर ही नहीं, फिर भेद करने की आवश्यकता कहाँ है? फिर अगर दोनों एक ही है तो इस विषय में चर्चा करने से भी क्या लाभ कि दोनों एक ही है? जब एक ही है तो इसके ऊपर सोचना क्यों है? Yes,
नॉर्मली आत्मा के बारे में ऐसा कहा गया कि भगवान का अंश है. और भगवान में जो भी क्वालिटी है वो आत्मा में ही सिर्फ क्वांटिटी में डिफरेंस है, राइट? तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई आत्मा शरीर में आया और वो शरीर से भिन्न रहता है, जैसे एज फॉर प्रभुपाद जी, राइट, और प्रभुपाद जी की डिशा जैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जो ज्ञान है, जो भक्तों के, जो भगवान के प्रतिनिधि के पास है, वो ज्ञान भी भगवान से तो कम ही है.
यस,
राइट,
भगवान से कम है. इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के पास अनंत ज्ञान है.
यस,
लेकिन भगवान जब चाहे अपने भक्त को साधन बना करके जितना ज्ञान देना चाहे दे सकते. इसलिए भगवान के भक्त और भगवान में केवल अंतर इतना ही होता है कि भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा के आधार पर काम करता है, और भगवान जो है वो अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है. इसका कभी अर्थ ये नहीं निकलना कि भक्त जो है उसमें भगवान से अधिक ज्ञान है. वो हो नहीं सकता. प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं द वर्ड च इज सिग्निफिकेंट फॉर इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ बॉडीज दैट इज द ओपिनियन ऑफ श्री बलदेव विद्याभूषण. Krishna is a super soul present in each and every body apart from the individual soul, and Krishna explicitly says here that the super soul is the controller of both the field of activities and the finite enjoyer. Kiska controller hai? Sharir ka aur sharir ke andar rehne wale atma ka, dono ka controller. So Vishwanath Chakri Thakur bhi iske vishay mein kehte hai ki I just read that point, Vishwanath Chakri Thakur ka. Okay, so the village vultures eat one fruit of the tree. अर्थात एक क्षत्रज्ञ अर्थात एक किसान वो अपने फल भुगतता है, अपने क्षेत्र में जो उसने बोया है उसका परिणाम वो भुगतता है. इसलिए जैसे हमने पिछले अध्याय में बताया ना कि कभी कष्ट आता है तो वो सोचता है भाई मैंने बीज डाले होंगे कहीं पर, तो आज वो उग के खड़े हुए, उस पर तीन जन्म ले लिए उसने उगने में, लेकिन अभी मुझे प्रकट होके सामने आया है मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में.
कड़वा खीरा अगर किसी ने लगा दिया खेत में तो उसे कोई खाना है तो ही खाएगा.
हाँ, अरे वो तो बाद में उसको क्या मिलेगा, वही मिलेगा. तो इस तरह से ये अगर आपने कांटे ही बोए थे और आप दूसरे के वन में देख रहे हो क्या इतने अच्छे मैंगोस आ रही है उसके यहाँ, तो मेरे यहाँ पर क्या आ रहा है कांटे, क्या किसने बोया था, हमने खुद बोए थे कांटे. तो इस तरह से भगवान स्वयं कहते द विलेज वल्चर्स ईट, एग्जाम्पल बता रहे, द विलेज वल्चर्स ईट वन फ्रूट ऑफ दिस ट्री व्हाइल द फॉरेस्ट स्वान्स ईट अनदर. विलेज वल्चर का अर्थ होता है गीत, बोलते क्या बोलते गीत. गीत जो होता है वो एक फल खाता है किसी वृक्ष में से, इस वृक्ष में से, और जो स्वान अर्थात हंस जो होता है दूसरा फल खाता है. सो वन हु बाय द ग्रेस ऑफ वर्शिपेबल सोल्स अंडरस्टैंड दिस ट्री कंपोज ऑफ माया एंड अपीयरिंग इन मेनी फॉर्म्स इज एक्चुअली नोअर ऑफ द वेदास. This means the vultures who live outside village, जो गीत जो गांव के बाहर रहता है उनको, या गृद्र बोल सकते हो, वो इंद्र तृप्ति के फल खाता है, या वो बद्ध जीव के उसका तुलना की जा सकती है. लेकिन जो मुक्त आत्मा होता है वो इसके मीठे फल खाता है हंस के माध्यम से. लेकिन क्षेत्र उन दोनों के लिए एक समान रूप से काम करता है. इन अदर वर्ड्स शरीर, ये शरीर का मैं उपयोग कर सकता हूँ इंद्रिय भोग के लिए भी, दुख भोग उसका परिणाम मुझे मिलेगा दुख, लेकिन यही शरीर का मैं उपयोग कर सकता हूँ भगवान की सेवा के लिए और इसका परिणाम मुझे मिलेगा हंस की तरह सुख. दोनों ही उपयोग हो सकते हैं. एक ही वृक्ष जो है वो अलग अलग शरीर से प्राप्त होता है दिखने में, लेकिन इसलिए इसको बोल ले माया मायम. वल्लभ विद्याभूषण इसके विषय में बताते हैं, ये शरीर को अज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं. जैसे कोई कहता है कि मैं देवता हूं, कोई कहता है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल एक ही समझने का एक ही महत्वपूर्ण बात है कि ये देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, ऐसा सोचता है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं ये समझना इम्पोर्टेंट है. मैं क्या हूं समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्र से अलग हूं ये समझना इम्पोर्टेंट है. दैट्स द पॉइंट. और फिर कृष्णा आगे क्षेत्र और क्षेत्र कृष्ण में चर्चा कर रहे हैं चौथे श्लोक में भी. किसी को एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस?
आपने मुक्ति के बारे में बोला बॉडी और आत्मा उसका नॉलेज मुक्ति के लिए इनफ नहीं है।
यस,
तो मुक्ति मतलब बैक टू गॉड है।
हाँ, मुक्ति का अर्थ साधारण दृष्टि से मुक्ति का अर्थ होता है शरीर और आत्मा का ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति। और पांच प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, साष्टी, सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य, यू नो, तो ये अलग अलग प्रकार की पांच प्रकार की मुक्ति होती है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से अगर निकल जाता है तो किसी एक वैकुंठ धाम में, वैकुंठ लोक में या फिर ब्रह्म ज्योति में अगर निराकारवादी है तो वो मुक्ति उसमें प्राप्त होती है। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल शरीर और आत्मा का अंडरस्टैंड, जैसे जैन, आई मीन नॉट टू क्रिटिसाइज देम, लेकिन वो लोग शरीर और आत्मा के अंतर को समझने, अगर वो एक्सपर्ट है, सभी शास्त्र को पढ़ा हुआ है और पूर्ण रूप से सब कुछ किया है उसने तपस्या, तो अधिक से अधिक वो लोग जीरो तक पहुंच सकते हैं, -10 to 0। लेकिन वो -10 to 0 तक में मुक्ति नहीं मिलती है, उसके लिए आपको प्लस करना पड़ता है, प्लस में जाना पड़ता है। मैथमेटिक्स में अगर चेक करोगे तो -10 to 0, 0 to +10, तो +10 वाला जो है वो है भगवान, वो ऐड करना पड़ता है। जब तक वो ऐड नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई गारंटी नहीं है, पहुंच भी सकता है नहीं भी पहुंच सकता है, उसका पता भी हो सकता है।
पहुंचने वाला कोई इंसान मतलब वो परमात्मा को जानने वाला होता है,
जब तक वो परमात्मा के साथ अपने आप को संबंध करेगा तभी वो वहां तक पहुंच पाएगा। हाँ, तो एटलीस्ट यू विल गेट मुक्ति,
यहाँ से मुक्ति मिलेगी।
हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी उसको, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वो केवल आत्मा और शरीर का ज्ञान रखता है तो वो इसी सर इसमें घूमता ही रहेगा, इसी प्रकृति के अंदर। उसको तभी मुक्ति प्राप्त होगी जब किसी की सहायता से या अपने निज के प्रयास से, ज्ञान के संवर्धन से परमात्मा के विषय में जानने का प्रयास करे। ओके, आप फिर से प्रश्न पूछिए।
जीरो तक हो गया, -2 से, तो अगर ब्रह्म ज्योति में वही जाता है वो परमात्मा को जानता है कि नहीं
जानता? उसको मुक्ति नहीं मिलती,
तो कर्म का ज्ञान लेगा नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी,
उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक।
पहले तो ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा, फिर भगवान।
यस,
तो लेवल ब्रह्म ज्योति एक लेवल डाउन।
यस, या ब्रह्म ज्योति लेवल डाउन है। अगर वो ब्रह्म ज्योति के विषय में भी अगर केवल ब्रह्म को ही मानने वाला है फिर भी उसको मुक्ति तो मिल सकती है, क्योंकि वो परम सत्य का एक स्टेप है, तीन स्टेप में है ना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो पहला स्टेप अगर उसको भी अगर वो मानता है तभी वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है, बट ही अलोन बॉडी एंड सोल के विषय में जाने से कुछ नहीं होगा। वैरागी हो जाएगा, वो बड़ा तपस्वी हो जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं उसका।
जैसे कि जो आपने जैन के बारे में बोला तो मैं भी वही सोच रहा था, जैसे दादा भगवान है तो दादा भगवान के अंदर भी यही आत्मा को और शरीर का ही वो अभ्यास होता है, उससे आगे जाते नहीं। मेरा प्रश्न ये कि जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है, तो जो लोग ब्रह्म तक है तो जो लोग परमात्मा तक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी वे लोग भगवान तक पहुंच सकते है अगर ये तीनों के बाकी के दो स्टॉक में है, तो SSC, HSC, बीकॉम, तो कभी ना कभी उनकी पॉसिबिलिटी रहती है।
यस,
लेकिन जो इसमें भी नहीं है तो वो तो चक्र
वो घूमते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, दूसरों को भी घुमाते रहेंगे, लेकिन वो तो घूमते ही रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई ठोस आधार ही नहीं है भगवान के विषय में। या दूसरे शब्दों में अगर वो लोग इतना ही जानते और इससे अधिक किसी और को स्वीकार नहीं करते शरीर और आत्मा के अलग से, सो दे आर ऑल्सो इन नास्तिक थियरी, क्योंकि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसलिए कुछ लोग शून्यवाद को मानते हैं, सब कुछ शून्य हो जाता है। लेकिन भगवान को जब तक कोई व्यक्ति, चाहे ब्रह्मा हो या परमात्मा, उसके आधार पर अगर वो स्वीकार नहीं करते तब तक उसके लिए मुक्ति की गुंजाइश नहीं है। यू कैन नॉट गेट मुक्ति, एक ही व्यक्ति दे सकता है ना, मुकुंद, और कौन दे सकता है? तो उसके अलावा ना ब्रह्मा जी दे सकते ना शिव जी दे सकते, मुक्ति कोई नहीं दे सकता, मुक्ति केवल भगवान दे सकते हैं, और उसी भगवान को जानना नहीं, जानता नहीं है तो कैसे मुक्ति मिलेगी उसको।
हम लोग ऐसी बात करते आ रहे थे कि अभी समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण को परम त्रिसत्य क्यों कहते
हैं। यस,
एक महादेव जी हम लोग आपस में डिस्कस करते आ रहे थे कि महादेव जी शिव जी जब प्रार्थना करते हैं गोकुल में जाकर भगवान जी के, तो उनको परम त्रिसत्यम कहते हैं। तो ये यही त्रिसत्य जो अभी आपने बताया ना प्रभु जी, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीन स्तर है सत्य के।
यस, और कृष्ण जो है परम सत्य है, फुल भगवान, एब्सोल्यूट। इसलिए जैसे हमने पहले दसवें अध्याय में भगवान ने नहीं बताया बोले किम वा बहु नैतन ज्ञान किम ज्ञाते न तवा अर्जुन अथवा बहु नैतन किम ज्ञाते न तवा, एक अंश है ना, मैं सारी सृष्टि को एक अंश मात्र से धारण करता हूँ, अंश मात्र से, मुझे खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, मेरा अंश ही कर देता है वो कार्य अंश मात्र से, इसलिए वो परम सत्य है। Is a complete whole. So, okay, चार तक हम लेते हैं, चौथा श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि पांचवा श्लोक में प्रभुपाद वो सब चीज बताते हैं, पांचों जो अलग अलग चीज है, अन्नमय ज्ञानमय, अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पांच अलग अलग जो चेतना के प्रोग्रेशन है वो पांचवें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं। तो इसे हम चार चौथा श्लोक पढ़िए।
वे तू मारी पासे थी आ सर्व विषय संक्षेप में सांभळ, के कर्म क्षेत्र शू छे, तेनु बंधारण केवी रीतनु छे, आमा कया फेरफार थाय छे, आ क्यांथी उत्पन्न थाय छे, आ कर्म क्षेत्र ने जाणनारो कोण छे अने तेनो प्रभाव केवो छे।
कितने वस्तु इधर पांच पॉइंट छह पॉइंट ओके तो
कर्म क्षेत्र
एक्चुअली वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो क्षेत्रज्ञ का वर्णन वो मूल बात है, और उसके उस मूल बात को पांच पॉइंट में बताया है। तो ये पांच पॉइंट याद रखना चाहिए, अर्थात पहला जो है वो पहला पॉइंट जो है वो छठे श्लोक में उसका आंसर है। एक्चुअली पांच पॉइंट भगवान ने बता दिए, फिर अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, डिटेल में बताओ, विस्तार से बताओ, एक एक पॉइंट क्या बता रहे हैं। तो छठा श्लोक में सेकंड पॉइंट क्या है,
इस प्रकार बना है इसमें क्या परिवर्तन
है, उसका आंसर है सातवें और बीसवें श्लोक में, सेवन टेक्स्ट नंबर सेवन और टेक्स्ट नंबर ट्वेंटी में। थर्ड कौन सा है,
क्या परिवर्तन होता है,
देयर वाज सेकंड राइट, अच्छा थर्ड
कहां से उत्पन्न
होता है, कहां से कब कैसे उत्पन्न होता है, कैसे कहां से कब, आई मीन कैसे कब कहां से उत्पन्न होता है, ये तीन चीज है वो छठा 21 और 22 इसमें उसका उत्तर दिया हुआ है। और चौथा कौन सा है,
जानने वाला कौन है,
हाँ तो उसकी पहचान क्या है, क्षेत्रज्ञ जो है उसकी पहचान क्या है, वो 14 से 18 और 23 टेक्स्ट नंबर 13 और पांचवा है
उसका क्या प्रभाव है,
और उसका प्रभाव वो 14 से 18 में वर्णन किया गया है। तो अभी ये सारी डिटेल इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है, कौन सी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। सो तीन नंबर का जो श्लोक है वो दैट आई थिंक इज क्लियर, राइट? वो क्लियर है ना? छ का उपयोग और दो अलग अलग प्रकार के नंबर जानने वाले दो प्रभुपाद एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रभुपाद जी का बता रहे थे कि आत्मा इज इंडिविजुअल, परमात्मा इज ऑल्सो इंडिविजुअल, बोथ ऑफ अस आर नोअर क्षेत्रज्ञ। माई नॉलेज में बी लिमिटेड बट कृष्णस नॉलेज इज अनलिमिटेड कंप्लीट। दिस डिफरेंस इज दैट कृष्णा नोज एवरीथिंग थ्रू आउट द क्रिएशन, वेर एज आई डू नॉट नो इवन माई ओन बॉडी, दैट इज द डिफरेंस। ये मेरा लिमिट समस्या है, मेरी लिमिट है और भगवान सब कुछ जानते। सो हाउ कैन वन बिकम गॉड, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भगवान कैसे बन सकता है? गॉड नोज एवरीथिंग, इफ वन नोज एवरीथिंग देन यू कैन एक्सेप्ट हिम एज गॉड। अगर किसी को सब कुछ पता है तो उसको भगवान कह सकते हो, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट इट। प्रभुपाद सेज एज सून एज समबडी सेज आई एम गॉड, किक हिम ऑन हिज फेस। प्रभुपाद सेज ऑन दैट, ओके यस यू आर गॉड, आई एम ऑल्सो गॉड, आई एम द किकिंग गॉड, दैट शुड बी द आंसर। आई एम द शू बीटर गॉड, नाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ यू आर रियली अ गॉड। डोंट एक्सेप्ट दिस फॉल्स गॉड, इस प्रकार के मिथ्या भगवान को स्वीकार मत करो। एग्जाम्पल दे रहे कि मैं जूतों से पीटने वाला भगवान हूँ और तुम जूतों से अपने आप की रक्षा करो अगर तुम सही में भगवान हो।
इज
गिविंग वेरी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स। So we stop here today. We have another lecture. We'll discuss later. Hare Krishna.